What is the root cause of confusion? Which is the greatest evil of intellectual community? जानती जानती सबसे बड़ी जो इविल है इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी की वो है कंफ्यूज थिंकिंग। इन कंफ्यूज थिंकिंग जो है वो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी की सबसे बड़ी इविल है। ऑलमोस्ट हर आदमी ही कंफ्यूजन में होता है, सिवाय इसकी कि जहाँ उसका पैसे का मामला हो, पैसा कमाने का, वहां तो ठीक डिसीजन ले पाता है। मॉनेटरी इंटरेस्ट, मॉनेटरी इंटरेस्ट के सिवा जितने भी ब्रांच ऑफ लर्निंग है हर मामले वो कंफ्यूजन में रहता है। का रूट काज क्या है ये समझना है। रूट काज मैं जहां तक समझा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि रूट काज है ये करेज ना होना। आदमी ये कह सके आई वॉज रॉन्ग, लोगों के लिए करेज नहीं होती। सीधे सीधे कोई कहते ही नहीं कई बार ना गुहा फिलहाल कहेगा उसका कोई फायदा नहीं। कई बार राम न खसकना, यानी जब आदमी कोई गलती करे तो कई बार राम न खसकना, इट इज दिस हैबिट दैट कंफ्यूजन। अब मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे आई वाज रॉन्ग से कितना लिंक होता है कंफ्यूजन। इसे दोनों में क्या क्या लिंक है वो बताता हूँ। देखो हमारी जो क्लास होती है संडे क्लास एक साहब आते हैं, वो बराबर आते हैं। फिर उनको ये पता हुआ कि हम अदर दिन संडे हम फ्राइडे को भी क्लास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम फ्राइडे को भी आएंगे, आना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, आप फ्राइडे को बताइए, इस संडे को आइए। उन्होंने बहुत का इंसिस्ट किया। जब बहुत इंसिस्ट किया उन्होंने तो मैंने कहा कि ठीक है आप आइए, मगर कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको फुलफिल करना होगा, तब आप आ सकते हैं फ्राइडे। तो उनका वो क्या कंडीशन है, मैंने कहा देखिए संडे क्लास जो है वो जनरल क्लास है, उसमें हर किसी को लोग आते हैं। ऐसे भी जो हमसे एग्री करते हैं, ऐसे भी जो सीकर हैं, ऐसे भी होते हैं जो हमसे एग्री न करते हो, तो हम किसी को रोकते नहीं उसमें जो चाहे आवे। लेकिन फ्राइडे क्लास जो है वो बहुत ही लिमिटेड क्लास है, लिमिटेड लोगों के लिए, कम लोगों के लिए। देखिए संडे क्लास में जो लोग आते हैं तो क्योंकि वो नहीं होते जो अटेंड करके अग्री करते, तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल ऑन रखा उन्होंने, अब बीच मोबाइल बजने लगा, हम बोल रहे हैं और मोबाइल बज रहा उनका, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। हम वहाँ पर टॉयलेट करते हैं, ऐसे लोग वो टॉयलेट करते हैं जो अब एक दिन एक साहब अपने बच्चे को लेकर आ गए, प्रॉब्लम। तो संडे क्लास में चूंकि हमने थोड़ा कुछ जनरल रखा है, तो वहां पर हम ایسے لوگوں کو بھی آنے دیتے ہیں جو چھوٹے موٹے پرابلم وہاں کریٹ کریں. اس امید میں, اس ہوپ میں کہ وہ آگے جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن فائدے میں ہم یہ تیار نہیں. اس کے لیے فائدے میں وہی لوگ چاہیے ہم کو جو کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں. یعنی فرائیڈے کلاس جو ہے اس کو ہم پرابلم فری کلاس رکھنا چاہتے ہیں. تو ان کا ٹھیک ہے, میں ظاہری کرتا ہوں یہ ہے وہ ہے. تو اچھا ٹھیک, آئیے آپ آئیے. تو آئے وہ پچھلے فرائیڈے کو. اب کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ کوشچن کے صرف بانٹتے ہیں لوگوں کو, پھر کلیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے یعنی ایز یوزول کوشچن کی صرف لوگوں کو دے رہے تھے, ان کو بھی دینے کے لیے ان کے پاس پہنچے. اب یہ کیا کہتے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے صرف کا. میں ان کی ورڈنگ یاد نہیں, مجھے کیا کہا تھا انہوں نے, پر انہوں نے آبجیکشن کیا کہ کوشچن پہ لکھا ہے, یعنی رائٹنگ میں کوشچن پہ کیا جائے. اس سے انہوں نے اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کیا اور یہ کہا کہ جو کوشچن کرنا چاہے اس کو آپ یہ موقع دیجیے کہ مائک پر آ کر کے وہ اپنا کوشچن پیش کر سکے. لکھنا نہیں, لکھنے میں آدمی ساری بات نہیں کر سکتا. اب اس طرح ان کے دونوں میں آرگومنٹ ہوا. اب یہ گویا کہ انہوں نے ایک پرابلم کریٹ کیا. اب وہاں وہ بول رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں, لوگ سنے پہ کیا کیا آرگومنٹ ہو رہا ہے. تو خیر پھر ان سے جب ملاقات ہوئی بات کو غالباً کل, تو میں نے کہا کہ آپ فرائیڈے کی کلاس میں آنے قابل نہیں. آپ نے کیوں ایسا کیا کہ وہ اگر پردھان سے آرگو کرنے لگے, تو آبجیکشن کیا آپ نے اس پر. اب دیکھو کیا ہوتا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہت رام سیدھے سیدھے, یہ نہیں کہا. کیا کہتے ہیں کہ وہ میں نے بیڈ انٹینشن سے ایسا نہیں کیا تھا. اب یہ کیا ہے, اٹ از دس ہیبٹ دیٹ بریڈ کنفیوژن ان یور مائنڈ. اب اس کا انالیسس کرو. یہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے بیڈ انٹینشن سے ایسا نہیں کیا تھا, اس کا انالیسس کرو. یہ یہاں پر سوال یہ نہیں کہ ان کے دل میں کیا تھا, سوال ریزلٹ کا ہے. یہ چاہے دل میں کچھ بھی ہو, لیکن وہاں پر آرگومنٹ جب ہوا تو وہ بول رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں, ایک نوائز پرابلم ہوا, دھیان پٹا سب کا, ڈسٹریکشن ہوا. تو یہاں پر جو ہے چاہے انٹینشن کچھ بھی ہو, لیکن ریزلٹ جو ہے وہی ہوا جو ہم جو انوانٹیڈ تھا. دل میں ہم کے کچھ بھی ہو لیکن ریزلٹ تو انوانٹیڈ تھا. دیکھو یہاں پر لرننگ پروسیس ان کا جو ہے وہ ٹھیک سے چلا نہیں, کیونکہ سم ٹائم اٹ از ایریلیونٹ, گڈ انٹینشن بیڈ انٹینشن از ایریلیونٹ, بیکاز وہاں پر جو چیز دیکھنے کی وہ ریزلٹ ہے. دل میں کہیں کیا وہ بات ہے, ریزلٹ کی بات ہے. تو ریزلٹ اگر انوانٹیڈ نکل رہا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم بیڈ انٹینشن نہیں کیا تھا. تو کیا انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ایسے مومنٹ ہوتے ہیں جبکہ یہ نہیں دکھایا تھا کہ دل میں آپ کو کیا تھا، ریزلٹ دکھایا تھا. بیڈ انٹینشن کی بات نہیں بلکہ بیڈ ریزلٹ کی بات ہے. تو جس چیز کا تعلق تھا بیڈ ریزلٹ سے، اس کو انہوں نے جوڑ کیا کس سے؟ بیڈ انٹینشن سے. تو اب یہاں اس طرح کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن ہے کہ آدمی جو ہے کہیں کی بات کہیں جوڑے. ہندی کا ایک وہ ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کمبا جوڑا. اب میں تم کو ایک اور دیتا ہوں کافر کے زمانے کا ایگزامپل. فرائیڈے کو کانگریگیشن پریئر ہوتی ہے، اور اسپیشلی وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو اور نمازوں میں نہیں ہوتا کہ امام ممبر پر کھڑے ہو کر ایک سرمن دیتا ہے جو کہتے ہیں خطبہ. تو ایک بار ایسا ہوا کہ امام خطبہ دے رہا تھا، اب بیچ میں کیا ہوا، ایک آدمی کچھ بول پڑا، کوئی بات بولا اس کہ ادھر بیٹھو یا ادھر بیٹھو، بول کر کچھ کہہ دیا. تو دوسرا آدمی کہتا ہے چپ رہو چپ رہو، یعنی وہ بولا تو دوسرا اس کو چپ کرنے کے لیے کہتا ہے چپ رہو چپ رہو. تو حدیث بتاتا ہے رسول اللہ کو جو معلوم ہوا یہ، تو آپ نے کہا کہ اذا قلت لصاحبك اسکت والامام يخطب فقد لغوت. اذا قلت لصاحبك اسکت والامام يخطب فقد لغوت. جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت تم کسی سے کہو چپ رہو چپ رہو، تو تم نے ایبسرڈ کام کیا. اب سوال یہ ایبسرڈ کیوں ہے؟ تو وہ آدمی جو بولا تھا تو گڈ انٹینشن بولا تھا وہ، کیونکہ اس کے بولنے سے ڈسٹریکشن ہو رہا تھا، لوگ دھیان سے سن رہے تھے امام کے خطبہ کو، اب بیچ میں بول کر اس نے لوگوں کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا. تو ایک آدمی طلب کر رہا تھا اس غلطی کو سے تاکہ چپ رہو، تو obviously it was right. غلطی کرنے والے کو تو کہہ رہا تھا کہ چپ رہو، لیکن آپ کہا کہ تم نے اپسٹ کام کیا فقط لگا ہوتا، فقط لگا ہوتا اپسٹ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایک آدمی بول کر کے آلریڈی وہ نوائز کریٹ کر چکا تھا. ایک آدمی بولا تھا وہ نوائز کریٹ کر چکا تھا وہ. اب تم کہو کہ دیکھو بھائی نوائز کریٹ مت کرو، تو ڈبل نوائز ہو گئی نا، نوائز ڈبل ہو گئی. جو ریکوائرڈ ہے وہ نوائز لیس انوائرمنٹ. ایک آدمی نے اگر اس انوائرمنٹ کو توڑا تو اس نے غلطی کی تھی، لیکن تم پھر جب کہا کہ چپ رہو تو تم نے ڈبل کر دیا نوائز کو. تو آپ دیکھو یہاں پر اگرچہ اس بولنے والے کی انٹینشن، یعنی وہ بولنے والا تھا اس نے بیڈ انٹینشن نہیں بولا تھا وہ، لیکن بیڈ ریزلٹ وہاں ہو رہا تھا، بیڈ ریزلٹ نکل رہا تھا. تو کبھی میں نے اس کو کہا کہ سم ٹائم یہ نہیں دکھایا جاتا کہ بعد میں بیڈ انٹینشن نہیں بولا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیڈ ریزلٹ نکل رہا ہے اس سے. تب بھی وہ غلط ہوگا. یعنی the good intention which produces a bad result is also wrong. جو good intention bad result پیدا کرے تو بھی غلط ہو. اب دیکھو کہ یہاں پر کنفیوژن سے کیا تعلق ہے. انڈیا کے ایک بات جس کو ریلیٹ کرنا چاہیے ریزلٹ سے, اس کو اس نے ریلیٹ کر دیا انٹینشن سے. یہ تو کنفیوژن ہے. یعنی کنفیوز تھنکنگ میں اور نان کنفیوز تھنکنگ میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی ریلیونٹ اور ایریلیونٹ, جس آدمی کے اندر ریلیونٹ اور ایریلیونٹ کا سینس نہ ہو وہی ہے وہ آدمی جو کنفیوز تھنکنگ والا آدمی. اور جس آدمی کو ریلیونٹ اور ایریلیونٹ کا اکیوٹ سینس ہو تو وہ کنفیوژن سے باہر ہے, وہ ساؤنڈ تھنکنگ ہوگی, اس کا مائنڈ فری آف کنفیوژن ہوگا. اس مثال میں دیکھو کہ اگر وہ یہ تیار ہوتے کہنے کے آئی واز رانگ آئی واز رانگ آئی واز رانگ, تو وہ ڈیفرینشیٹ کر لیتے وہ دو چیزوں کو اور صحیح سے جوڑ لیتے اس ایونٹ کو, وہ جوڑ لیتے ریزلٹ سے جب کہ انہوں نے جوڑا انٹینشن سے. یعنی ایک ایونٹ جس کو جوڑنا چاہیے تھا ریزلٹ سے اس کو جوڑ دیا کس سے؟ انٹینشن سے. یہ تو کنفیوژن ہے کہ مائنڈ میں چیزیں جو ہے سارٹ آؤٹ نہ ہوئی ہوں, اس کا تعلق اس سے ہے کہ اس سے ہے. مائنڈ میں ملین ملین آئٹم ہوتے ہیں ہر وقت, تو آدمی اگر سارٹ آؤٹ کرے, سارٹ آؤٹ کر کے مائنڈ میں یہ فیل کرے کہ اس آئٹم کا تعلق ریزلٹ سے ہے, انٹینشن سے نہیں ہے. انٹینشن کیسی ہے اس سے باز نہیں ہے, ریزلٹ برا نکل رہا ہے اس سے باز ہے. اب سپوز ابھی اچانک شاہ جہاں صاحب لگے اپنی باؤنڈری رنگ کہانی بنانے کے زور زور سے, انٹینشن اچھا ہوگا اس کا کہ اس کا ایکسیپٹ کر دیا اس تو ریزلٹ بائٹ نکلا. دوسری چیز یہ ہے, یعنی اسی واقعے کو جو انہوں نے کہا کہ میں نے بیڈ انٹینشن سے نہیں کہا, تو دوسرے ورڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چیز جس کا تعلق تھا ڈسپلن سے. یعنی فرائیڈے کی میٹنگ میں اگر ڈسپلن میٹنگ کہا چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی دوسری بات نہ کہے, تو انہوں نے ایک اور بات چھیڑ دی, یعنی فرائیڈے کی میٹنگ میں ہم چاہتے ہیں کہ جو بات وہاں کہی جا رہی ہے بس وہی انڈر ڈسکشن ہو, کوئی دوسری بات کیا کیا یہ کافی دکھے تو بات چھیڑ دے وہاں سے سپوز, تو غلط ہوگا. فرائیڈے کی میٹنگ میں آپ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. یہ فرائیڈے کی میٹنگ میں یہ بات نکلنا نہیں ہے چائے پیے کافی پیے, اس پر کارپٹ بیٹھے کرسی بیٹھے مجھے لکھ کر کے کوشچن کرے کہ بول کر کوشچن کریں, وہاں پر یہ سب چیز جو ہے انڈسپلن مانی جائے گی. انڈسپلن وہاں جو ڈسپلن ہے تو وہ ڈسپلن سائلنس, سائلنس جو ہے وہ پرنسپل ہے تاکہ ڈسپلن مینٹین کر سکے. کوئی دوسری بات ادر دین ٹاپک وہاں چھیڑنا, وہاں ڈسپلن کو توڑنا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک چیز جس کا تعلق تھا ڈسپلن سے اس کو جوڑ دیا کس سے؟ انٹینشن سے. یہ تو کنفیوژن ہے. कंफ्यूजन ये है कि माइंड में जो इंफॉर्मेशन है हमारे, उसको हम शॉर्ट आउट कर चुके हों। हमारा माइंड व्हाइट को व्हाइट जाने, ब्लैक को ब्लैक जाने, हर चीज शॉर्ट आउट हुई हुई हो। माइंड को ऐसा ना हो कि माइंड पता नहीं ब्लैक ब्लैक है कि रेड है, व्हाइट व्हाइट है कि ब्लू है। जब यह ऐसा हो तो उसी का नाम कंफ्यूजन है। जिस चीजों को शॉर्ट आउट करना, ब्लैक और व्हाइट अलग अलग हो जाता है, ऐसे आइडियाज को, इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट आउट करने से कंफ्यूजन खत्म होता है। तो जब आदमी आई वॉज रॉन्ग न कहे, मैंने उसे शॉर्ट आउट नहीं किया। आई वॉज रॉन्ग कहा उसने, तो उसने शॉर्ट आउट किया, यानी ब्लैक को ब्लैक के खाने में डाल दिया, व्हाइट को व्हाइट के खाने में डाल दिया, ब्लू को ब्लू खाने में डाल दिया। ये शॉर्ट आउट करना है। अगर उसे शॉर्ट आउट नहीं किया तो गया कि सब उसी में वो हाइब्रिड वे में सब उसे डाल रखा है। देखो आदमी बोलता है तो दो किस्म के माइंड होते हैं। एक वो माइंड है जिसके अंदर चीजें शॉर्ट आउट हो चुकी हों पहले से, बोलने से पहले से, जब बोलेगा तो उसके अंदर क्लैरिटी होगी। जब शॉर्ट आउट हो चुकी हों तो क्लैरिटी होगी। मतलब ये जो मैंने मिसाल दी कि ये इशू डिसिप्लिन का है या इंटेंशन का है, ये इशू रिजल्ट का है या इंटेंशन का है। तो अगर हमने उस वक्त जब हमने गलती की थी, हम कह देते कि आई वॉज रॉन्ग, तो जो आइटम हमारे माइंड में आया था इंटेंशन के तौर पर, वो चला जाता उसमें रिजल्ट के खाने में चला जाता। माइंड में दो दो शेल्व हैं, फर्ज करो दो खाने हैं। एक में हम रखते हैं इंटेंशन वाली आइटम को, एक में रखते हैं रिजल्ट वाले आइटम को। तो अब ये बात आई, तो अगर हम कहते हैं आई वॉज रॉन्ग, तो हम क्या करते, उस आइटम को हम डाल देते रिजल्ट के खाने। क्योंकि जब हम आई वॉज रॉन्ग नहीं कहा तो हमने उसको डाल दिया इंटेंशन खाने में। अब हम बोलेंगे तो बातें गड़बड़ रहेंगी, तब बोलेंगे तो उसमें कंफ्यूजन रहेगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी आती है जब हम शॉर्ट आउट किए हुए हों पहले से। माइंड में बहुत सारे सेल हैं, तो शॉर्ट आउट करने के बाद राइट सेल में डालें उस चीजों को, जो इंटेंशन वाली बात उसको इंटेंशन में डालें, जो रिजल्ट वाली बात उसको रिजल्ट में डालें। तो क्लियर थिंकिंग या क्लैरिटी इन थॉट का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो यह है कि आदमी ये कह सकता है बोल रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ। अगर तो है लेके अरबिक भी कहते हैं अल इंसान और मुरक वो मेरे खतः व निशान, उसी इंग्लिश में कहते हैं टू एर इज ह्यूमन। तो जब ट्वेरिज ह्यूमन की बात है तो आदमी गलती तो करेगा। आदमी एक ऐसी दुनिया में जहां उसको गलती करना ही करना है, सुबह शाम गलती करेगा वो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आदमी गलती न करे। ट्वेरिज ह्यूमन, तो जब ये बार बार ऐसा होगा कि हम गलती करेंगे, तो क्या वो जो मोमेंट होता है, वो मोमेंट वो शॉर्ट आउट करने का मोमेंट होता है। जब हमने गलती की तो शॉर्ट आउट करने का मोमेंट हो आ गया। एक की जिसको हम ब्लैक समझ रखा था, तो हमने सफेद कह दिया, उसको व्हाइट कह दिया, तो ये गलती थी ना। अब उसको शॉर्ट आउट नहीं किया हमने, आई वॉज रॉन्ग कहकर शॉर्ट आउट नहीं किया। जैसे कि वो मिसाल दी, एक इवेंट जिसका तल्लुक रिजल्ट से था, उसको हमने कह दिया कि बैड इंटेंशन नहीं था। तो गया कि जो रिलेट कर रही थी रिजल्ट से, उसको रिलेट कर दिया हमने इंटेंशन से, ये गलती थी। तो जल्दी से हम कह दें कि आई वॉज रॉन्ग, तो क्या हमने शॉर्ट आउट कर लिया। सॉर्ट आउट कर लिया कि वो आइटम चला गया रिजल्ट के खाने में, लेकिन अगर हम आज आवाज न कहें तो चला गया इंटेंशन के खाने में। ये कंफ्यूजन, ऐसे लोग जब बोलेंगे उनके पास समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनके बाद में क्लैरिटी नहीं होगी। तो सॉर्ट आउट करने से क्लैरिटी आती है, जब क्लैरिटी आती है तभी आदमी कंफ्यूजन फ्री टॉक कर सकता है। जैसे एक लेडी हमारे पास आई तो बातचीत में महसूस कहती है अंदर सैड है, अंदर हैप्पी नहीं। तो मैं कह रहा कि भाई आप अंदर सैड मालूम होती है, अंदर से आप सैड मालूम होती है। नहीं 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 नहीं, अब जो बातचीत और चली तो कहती है कि घर में हमारे बात कल टेंशन रहता है, हस्बैंड और वाइफ को लेकर के, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे वो बहुत ज्यादा भाग जाते थे, गए तो कई कई दिन तक नहीं लौटे, कोई काम ऐसा था उनका। अब ये अकेली पड़ी हुई है, हस्बैंड जो है टूर पर है, अब वो कहे जब ये क्या है, कहते नहीं मैं तो अब इस पर तक आपस में झगड़ा होता था, एक झगड़े से और कई झगड़े पैदा होते हैं, एक झगड़ा दो झगड़ा तीन झगड़ा बनेगा, तो इससे दोनों में टेंशन रहता था हस्बैंड और वाइफ में भी। तो जब मैंने कहा कि आप अंदर से सैड मालूम होती है, कहा नहीं, तो जब बात को उन्होंने खुद ही कहा कि टेंशन रहता हमारे घर में, तो मतलब वही तो मतलब है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैड एंड टेंशन, ये तो दोनों एक ही चीज है। सैड रहने का मतलब है टेंशन डिस्ट्रेस, सैड रहने का मान तो टेंशन है और टेंशन का मतलब सैड रहना, एक बात है। तो उन्होंने ये नहीं कहा राम, अब क्या हुआ शॉर्ट आउट नहीं कर सके, वो टेंशन और सैड दो वर्ड है, उसको शॉर्ट आउट नहीं कर सके। मैंने माइंड में क्या बात उनकी बैठी, माइंड में बैठी कि इट इज पॉसिबल दैट वन इज लिविंग इन टेंशन बट एट द सेम टाइम ही इज फ्री ऑफ सैड, कि एक आदमी टेंशन में जी रहा है लेकिन साथ साथ वो सैड पर्सनालिटी उसके अंदर नहीं है। अब ये कंट्राडिक्शन है, इससे सोच में कंट्राडिक्शन आता है, इट ब्रीड्स कंट्राडिक्टरी थिंक। अब जैसे कि मैं पानी पी रहा हूं, अब पानी पी रहा हूं मैं, पानी गिर गया मेरे कपड़े पर, कपड़ा भीग गया, कोई आगे आदमी कहे कि भाई देखिए आप गलत ढंग से पानी पिया, तो पानी गिर पड़ा आपके कपड़े के ऊपर और कपड़ा भीग गया आपका, तो नहीं पानी नहीं गिरा, नहीं पानी नहीं गिरा, तो उसको मतलब क्या हुआ कि पानी से कपड़ा भीगना, पानी से कपड़ा भीगना और गिलास का पानी गिरने के बाद फिर भी न भीगना, दोनों एक बात होगी उसके माइंड में, कंट्राडिक्टरी थिंग आई उसके अंदर। तो ये कहना कि मैं अंदर से सैड हूं और ये कहना कि मैं टेंशन में रहता हूं, दोनों एक ही बात है, लेकिन उसके माइंड में दो बात हो गई, क्योंकि उसे शॉर्ट आउट नहीं किया आई वॉज रॉन्ग कह करके। अब खड़ा होकर स्पीच दे रहा है वो, ये आदमी खड़ा होकर स्पीच दे रखे क्या कहेगा कि नाउ अ डे पीपल आर लिविंग इन टेंशन, सपोज उसी अगले जुमले अगले सेंटेंस में कह देगा लेकिन लोग सैड नहीं है, तो कोई समझेगा इस बात को, कोई समझ सकता है? एक तरफ वो कह रहा है कि इस जमाने में लोग जो है टेंशन में स्ट्रेस में जीते हैं, तो बात को कह रहा है कि लेकिन अंदर से लोग सैड नहीं है, तो कोई समझेगा इसको? इसीलिए लोगों का आर्टिकल पढ़ो पेपर्स में, उनकी पीछे सुनो, उनकी किताबें पढ़ो, सेवा कर, फिर कुछ नहीं मिलता। कोई भी बुक में एक भी विदाउट एनी एक्सेप्शन में देता हूँ, हर बुक में कन्फ्यूजन होता है। उसी दिन से मिसाल हुआ जो कराए थे मोटी सी, बड़ी तारीफ करे थे उसकी, याद है वो? तो मैंने कोई पैसेज निकाली इसका, एक पैसेज निकाला तो मैंने कहा पढ़िए, तुमने किसे पढ़ा? कई आदमी थे, कोई एक भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या इसका जिसके मैं पूछा। उस बुक की सब लोग तारीफ कर रहे थे, मैंने ठीक है एक पैसेज पढ़िए। अब पूछा कि इसका जिस्ट क्या है, कोई बता नहीं सकता जिस्ट। ये कन्फ्यूजन लोग आई बात राम नहीं करते, इसलिए उसका माइंड में आइटम शॉर्ट आउट नहीं होते, हर बात मिली जुली रहती है, व्हाइट एंड ब्लैक। तो बोलते हैं तो उसमें, बोलते हैं लिखते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है। उसी के वो एक एग्जाम्पल वो है, देखो जो आदमी ये चाहता है कि थॉट में क्लैरिटी हो, उसके माइंड में कन्फ्यूजन ना हो, वो बोले तो लोग समझे, फौरन समझ जाए क्या बोल रहा है। तो सबसे जरूरी है कि वो ये कहने की करे अपने अंदर पैदा करे कि आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग। क्योंकि गलती तो आदमी करेगा, हर इज ह्यूमन। तो अब जब गलती आदमी करता है तो राइट और रॉन्ग को शॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है? गलती करने का मतलब कि हमने इस चीज को रॉन्गली एक आइडिया बना रखा था उस चीज के बारे में। गलती करना क्या है? ये तो है, और उसको हम बोले। जैसे कल मैंने कहा था तुमसे रिजर्वेशन की बात है, तो सारे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि बगैर रिजर्वेशन के इंडिया में प्रोग्रेस नहीं हो सकती। सब लोग कहते हैं ना, यहाँ पर क्या है गलती कि ये सही बात है कि इंडिया में ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग आ जाए, ये एक फैक्ट है। लेकिन सवाल है कि बैकवर्ड लोगों को फॉरवर्ड बनाने का तरीका क्या है, ये बैकवर्ड लोगों को फॉरवर्ड कैसे बनाया जाए? वो समझते हैं कि रिजर्वेशन, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, वो है गुड लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बैकवर्ड इसलिए हैं कि इंडिया में अभी तक 60 बरस बीत गए, अभी तक हम यहाँ के लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके। जिस चीज का ताल्लुक है इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसको उन्होंने लिंक कर दिया किसी से, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन देकर भी कुछ नहीं होने वाला है, रिजर्वेशन तो सिर्फ रिथार ही आएगी बस, और कुछ नहीं। क्यों ये बात हम क्यों कहते हैं? एक आदमी, कोई भी आदमी जो पैदा होता है, चाहे वर फैमिली में पैदा हो या रिच फैमिली में, हर आदमी के अंदर कुछ डिजायर होती है कि मैं कुछ करूं, पैसा कमाऊं, घर बनाऊं, कार खरीदूं, हर आदमी के अंदर ये भरा हुआ है। तो अब क्या है, वो चाहता है कि मैं कुछ काम करूं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो कर नहीं पाता, यदि अपनी स्पिरिट जो उसके है वो एक्चुअलाइज नहीं हो पाता। मगर किसान चाहता है कि हम अपने उसमें पैदा करें, तो आप जब पैदा किया उसने तो क्या है, इरीगेशन चाहिए, इरीगेशन से लाइट बिजली चाहिए। अब जब टाइम आया इरीगेशन का, तुम्हारे पास बिजली नहीं है, क्योंकि किसान जो है बोरिंग करके वो लगाता है वाटर पंप, बिजली चलता है वो, तो इरीगेशन के टाइम में वो बिजली ऑन करेगा, तो पानी खींचेगा और खेत में पानी आ जाएगा। अब जब वो सिर्फ ऑन किया तो बिजली नहीं है, तार खींचा हुआ है और बिजली उसमें पावर हाउस से बिजली नहीं आ रही है वहां पर। अच्छा उसने कोई प्रोडक्ट निकाला आपके खेत में और उसको बेचना है तो रोड नहीं है, कैसे ले जाए? सर पर तो ले नहीं जाएगा, तो बिजली होनी चाहिए ताकि इरीगेशन कर सके, वो रोड होना चाहिए ताकि वो मार्केट तक पहुंचा सके अपने प्रोडक्शन को, बैंक होना चाहिए जिससे कि वो डीलिंग मामला कर सके। इस सारा बेस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो आदमी चाहता है कि मैं काम करूं बाय बर्थ, हर आदमी, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके अंदर करने का शौक ना हो। वो चाहता है कि मैं पढ़ू, मैं चाहता है कि मैं काम करूं, मैं चाहता हूँ पैसा कमाऊं। तो यहाँ पर जरूरत किस बात की है? सिर्फ एक बात की है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए, बस। मतलब हर गांव में स्कूल हो, हर गांव में रोड हो, हर गांव में बिजली की लाइन हो, सारे यानी सारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ हो, जैसा कि जापान में है, जैसा कि चाइना में है, जैसा कि अमेरिका में है। ये डेवलप्ड कंट्रीज में इसलिए नहीं डेवलप्ड है कि वहां रिजर्वेशन था, किसी भी कंट्री में चाहे जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है, जापान है, अमेरिका, कहीं भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया। वो जो चीज दी गई वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे पढ़ा मैंने पेपर में कि यूरोप में ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है इटली का, ये मैंने पढ़ा था रिपोर्ट में, यूरोप में सबसे ग्रोथ रेट जो है वो इटली का है। तो साथ साथ ये मैं पढ़ता था कि वहां बार बार गवर्नमेंट बदलती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इटली में। इस साल में टर्म तो पूरा होता है 4 साल या 5 साल में, वहां हर साल या छह महीने में गवर्नमेंट बदलती थी। तो मैं सोचा कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहां तो तरक्की कैसे होती है, इन ग्रोथ रेट उसका सबसे ज्यादा कैसे है। तो मैं इटली गया, वहां पर इधर उधर घूमा, तो मैंने क्या पता किया, इटली में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है सारे यूरोप से अच्छा। परसेंट क्या है, सिटी में जो रोड है जितनी अच्छी उतनी अच्छी रोड गांव में भी है, विलेज में भी। इस सिटी की रोड में और विलेज की रोड में कोई फर्क नहीं। अब इंडिया में क्या है, या तो रोड है ही नहीं, या रोड है तो सब इधर ऊंचा इधर नीचा, इधर गड़ा उधर टूटी फूटी। तो उतनी अच्छी रोड जैसे कि सिटी में उतनी अच्छी रोड वहां विलेज में। ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, मगर ट्रेन जो है, इटली की ट्रेन में सफर करना एक समझो कि वो है फन, एंजॉय करता है आदमी सफर करता है। और यहाँ पर अगर बैठ जाओ इंडिया में ट्रेन में एक मुसीबत है। तो जो वो सारी चीजें इसका तल्लुक इंफ्रास्ट्रक्चर से, बिजली है, कब बिजली फेल नहीं, यहाँ बार बार बिजली फेल होती रहती है शहरों में, और विलेज में तो आती ही नहीं एक दिन तक, 24 घंटे रात दिन बिजली बिल्कुल। जब आप बटन दबाएंगे, जब आप स्विच दबाएंगे बिजली मौजूद, जब स्विच दबाएंगे बिजली मौजूद। तो इंसान जो है ये सूफिया जो है हीरो बन जाए अगर उसको सब चीज मिल जाए, सबसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, सूफिया हीरो बन जाए, हर आदमी हीरो बन जाए। ये हमारा जो लड़की काम करती है वो हीरो बन जाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है एक और चीज, कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी उसमें जुड़े हुए बात एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पुलिस वाले हैं इंडिया में क्या है, पुलिस वाले क्या करते हैं, एक आदमी लॉलेसनेस करेगा, मतलब वो रोड पर गाड़ी दौड़ा रहा है रॉन्ग साइड में, वो टकरा गया, अब पुलिस वाला आया, क्या करेगा वो, उसके जेब में 100 रुपये का नोट डाल देगा, वो कुछ भी नहीं होगा, रिपोर्ट ही नहीं करेगा वो। कोई भी लॉलेसनेस उनके लिए एक चांस होता है पैसा कमाने का। डेवलप कंट्रीज में या इटली में अगर एक आदमी कानून को तोड़ता है तो उसको पुलिस पकड़ती है, या क्या है कानून तोड़ो और पुलिस आएगी तो उसको उसको पैसा लेना है, पैसा लेके चलिए, ये करप्शन। तो करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना हो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है, हम विंडो पर जाए किसी काम के लिए घर से काम हुआ हमारा, ये नहीं कि वहां पर घंटों खड़े हुए जब विंडो पहुंचे तो पैसा मांग रहा है वो, दौड़ा रहा है हमको कि ये काम आज नहीं होगा कल होगा। तो अगर यहाँ पर इंडिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, अच्छी पुलिस हो, ये जुग्गी झोपड़े वाले हीरो बन जाएंगे, हीरो। और जैसे देता है जैसे कुछ भी नहीं होने वाला सवाल लिखा लिखा, ये बात तो समझ लो कि रिजर्वेशन से जो रिजल्ट आएगा वो लिखार्जी होगी, तो प्रोग्रेस नहीं होगा, इसे कोई जानता नहीं। इंडिया में एक आदमी नहीं है जो ये बात को जाने, एक भी बड़ों में ना छोटों में, पढ़े लिखे में ना पढ़े लिखे में, कि रिजर्वेशन से जो आने वाली है एज रिजल्ट वो है क्या लिथार्जी। ये नहीं कि इंडिया तरक्की करने लगे, दो बातें मैंने कही, दोनों बातें तो सर्वे कर रहा सारी इंडिया का, एक भी नहीं जानता आदमी कि जिस चीज ने रोक रखा है प्रोग्रेस को वो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, लेक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन उसको लिंक की हुई कहां से, जो आदमी पैदा हुआ तो गरीब फैमिली में, गरीब फैमिली में पैदा रुकावट नहीं है, लेक इंफ्रास्ट्रक्चर रुकावट है। अंबानी में गरीब फैमिली में पैदा हुआ, पैदा वो बन गया, सारे सर बिरला गरीब फैमिली में पैदा हुआ, दबा इंडस्ट्रीज बन गया। तो गरीब फैमिली में पैदा होना रुकावट नहीं है, रुकावट है इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना। दूसरी बात यह है कि रिजर्वेशन देकर के जो आने वाली है वो लिखावटी है, वो तरक्की नहीं है। अब इससे समझो कि लोग को थॉट ऑफ थिंकिंग बिल्कुल नहीं है, कुछ सोचता जानता नहीं, सब कंफ्यूजन में, सब कंफ्यूजन, सब कंफ्यूजन। जब इंडिया आजाद हुआ ना तो नेहरू ने कहा था कि इंडिया में सबसे बड़ी कमी जो चीज की है वो साइंटिफिक टेम्पर की कमी है, इंडिया में सबसे ज्यादा कमी जो चीज की वो साइंटिफिक टेम्पर है। मगर वो नहीं, इंडिया से कमी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, तो प्रति कैसे हो। तो 60 साल बीत गए आज तक क्योंकि डायग्नोसिस सही नहीं है, इन्हें इधर उधर काम करते हैं लोग। इन्हें आजादी के बाद पहला काम करना चाहिए था कि वो अच्छे अच्छे स्कूल खोले जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया जाए, और सब कुछ कॉम्पिटिशन पे चले, कॉम्पिटिटिव पेरिश, बस हमने स्कूल खोल दिया है, पढ़ना पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओ, हमने स्वास्थ्य भी बना दिया है, आपको तो करो तो बाहर में जाओ। अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट कर दी है, तुम अवेल करो तो करो, नहीं करो तो न करो। ये था फ्रीडम के बाद जो काम करना था वो नहीं किया, दूसरे दूसरे काम किए, बेमतलब काम। यही काम करना था कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दी जाए कि जो पढ़ना चाहे अच्छे अच्छे स्कूल मौजूद है, जो काम करना चाहे तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। आज इंडिया उसी तरह डेवलप कंट्री बन चुका होता जिस तरह से और कंट्री बने, लेकिन आज तक कोई तरक्की आने हुई सिवा झूठे। एक हिंदी कवि ने कहा था इसी पर कि खाने को भाषण मिलते हैं, पीने को देश रे। तो बता यहाँ पर कुछ तरक्की तो हुई नहीं, स्पीचेस देते हैं सारे लीडर, रोजाना स्पीच दे रहे हैं। तो उसने कहा था खाने को भाषण मिलते हैं, पीने को देश रे।